Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Svetashvatara Upanishad ke Swadhyaya Antargat मंत्र है 16वां, पहले अध्याय का 16वां मंत्र, यानी अंतिम है पहला अध्याय का लास्ट मंत्र। अभ्यास करो। सर्वव्यापी नमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् सर्वव्यापीनमात्मानम् क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् सर्वव्यापीनमात्मानम् क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् कथं एनम् अनुपश्यति इत्यत आह। उस आत्मा को जो तिल में तेल की तरह रह रहा है, जो दही में घी की तरह रह रहा है, जो नदियों में जल की तरह रह रहा है, जो लकड़ियों में अग्नि की तरह रह रहा है, ऐसे आत्मा को गृह्यते असुः, उसको ग्रहण करना चाहिए। केन सत्तेनेनम तपसा यो अनुपश्यति अनुगृह्यते। तो कथम येन अनुपश्यति, उसको देखने का यानी अनुभव करने का, इसी तरह इसी शरीर में इसी अंतकरण में तत्पथ का लक्ष्य अर्थ जो ब्रह्म है आत्मा है, वह भी यहां रह रहा है। तो उसको देखना है, उसका दर्शन करना है, यानी उसका अनुभव करना है। देखना है का मतलब दृष्टा दृश्य भाव से देखना है, ऐसा नहीं क्योंकि उसका तो कितना खंडन कर रहे हैं। तो तुम दृष्टा और वह दृश्य होकर देखें, ऐसा नहीं है। वह स्वयं अपने रूप में अनुभव करना है, तो अनुभव को ही यहां उपनिषद ने पश्यति कहा है, न कि दृष्टा दृश्य भाव से देखना, क्योंकि वह दृश्य तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद ही दृष्टा है। तो दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं बन सकता, ये अकाट्य नियम है। नहीं दृष्टेर दृष्टुर विपरिलोपो विद्यते, दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं बन सकता और दृश्य कभी भी दृष्टा नहीं बन सकता। दृष्टा हमेशा दृष्टा ही रहेगा, दृश्य हमेशा दृश्य ही रहेगा। दृश्यों को दृश्य के ही रूप में ग्रहण करना चाहिए, जानना चाहिए। दृष्टा को दृष्टा के ही रूप में जानना चाहिए, यही वास्तव में ज्ञान है। वास्तव में ज्ञान यही है कि दृष्टा को दृष्टा के रूप में जान लो और दृश्य को दृश्य के रूप में जान लो। न तो दृष्टा को दृश्य मानो, न दृश्य को दृष्टा मानो, न दृष्टा और दृश्य को एक मानो। और दृष्टा और दृश्य को दोनों को एक मानोगे तो दृष्टा दृश्य क्या होगा भाई? तो यह अनुपस्थिति का अर्थ अनुभवति, अनुभव करना है। ये तो अष्टावक्र गीता में भगवान अष्टावक्र ने कहा राजा जनक को, महाराज इतने दिनों से आप समझाते हो फिर भी आत्मदर्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत दिन लग गए, बहुत वर्षों लग गए, फिर भी मैं आत्मदर्शन नहीं कर पा रहा हूं। बोले बेटा कि इतने दिन तक दर्शन हो न पाने में यही कारण है कि तू दृष्टा को दृश्य के रूप में देखना चाहता है। और दृष्टा को तू दृश्य के रूप में देखने चाहेगा तो इतने दिन की बात छोड़ दो, कितने जन्म बिगड़ जाएंगे। तो किसी भी जन्म में संभव नहीं है, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य बनेगा नहीं। तू दृश्य के रूप में देखना चाहता है वो असंभव है। दृष्टा को दृश्य के रूप में देखना चाहता है तो तू कभी भी आत्मदर्शन नहीं कर पाएगा। क्यों महाराज? असंभव है वो, दृष्टा दृश्य नहीं बन सकता है। अयमेव ते बन्दा दृष्टारम पश्यसि इतरम। दृष्टा को दृष्टा से भिन्न रूप में देखना चाहता है, यही तेरे लिए बंधन है। दृष्टा ही मैं हूं इतना निश्चय कर ले तो मुक्ति है, बंधन खत्म हो गए। जो दृष्टा है वो मैं हूं, मेरा स्वरूप है। दृष्टा मेरा स्वरूप है, दृश्य मेरा स्वरूप है ही नहीं। और यही नहीं कर पाते हैं तो समस्या बनी रहती है। तो लोग कहते हैं आत्मदर्शन करा दो, तो कैसे करा दें आत्मदर्शन महाराज? कैसे करा दें? जिसको तू देखना चाह रहा है वो तू है, तो कैसे करा दें? जब तू अपनी आंखों से अपना चेहरा नहीं देख सकता है तो तेरे को अपने आंख से तेरा कैसे दर्शन करा दें? जब तू अपनी ही आंखों से अपना ही चेहरा नहीं देख सकता तो तुझे तेरा ही दर्शन हम कैसे करा दें? बोलो, तुझे खुद करना है। खुद करना है मतलब दर्शन करना है इसका मतलब नहीं है कि निश्चय करना है। या आत्मदर्शन करना का मतलब निश्चय, हमसे आके पूछते महाराज आपका तो आपको तो आत्मदर्शन हुआ होगा ना, अब क्या उत्तर दें भाई? आप लोगों को क्या लग रहा है, ये प्रश्न कहीं सही है? ये कोई समझदार का प्रश्न है ये? महाराज आपको तो आत्मदर्शन हो गया ना महाराज, अब उसको क्या उत्तर दें? बोला हाँ आत्मदर्शन हो गया। बोले कैसा है आत्मा? अब क्या बताएं भाई कैसा है? मैं जैसा हूं वैसा ही है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? आत्मदर्शन का अनुभव का या एक्सपीरियंस क्या होता है, क्या होगा? कैसा है आत्मा? मैं जैसा हूं वैसा ही। अब क्या उत्तर देंगे कि मैं कैसा हूं? इसका तो कोई उत्तर नहीं है। तो महाराज अखंडानंद जी महाराज उत्तर दिया करते थे। कहते हैं कि एक व्यक्ति गया, महाराज बताइए ईश्वर कैसा है, परमात्मा कैसा है? बोले तू जैसा है वैसा ही है। उसने जो प्रश्न किया उसका उत्तर यही है कि परमात्मा कैसा है? बोले तू जैसा है वैसा ही है। बोले मैं कैसा हूं? बोले तू ईश्वर जैसा है। ईश्वर जैसा है वैसा ही तू है। अब वही बात, बोले हम और ईश्वर कैसे हैं, बोले एक जैसा है। अब वेदांत का तो यही लक्ष्य है ना, तुम और ईश्वर दोनों मिलकर कैसा होगा, तुम कैसे हो, ईश्वर जैसे हो, ईश्वर कैसा है, तुम जैसे हो, तुम दोनों मिलकर कैसा होगा, एक जैसा होगा, एक जैसा होता है वैसे ही। अब उसको तुम हमको एक्सपीरियंस करा दो, हमको अनुभव करा दो, अभी कैसे संभव है। कोई दूसरा करा दिया जाए तब तो संभव होता, कोई दूसरा तो कराएगा नहीं, वो तो तुमको खुद ही अनुभव करना पड़ेगा। बेटा मैं अनुभव कैसे करूं, बोले वो अनुभव करने के लिए जो युक्ति शास्त्रों ने बताया है उन युक्तियों का प्रयोग करके अनुभव कर सकते हो। कौन सी युक्ति का, तत्त्वमसि, ये भागत्याग लक्षणा युक्ति का प्रयोग कर लो, जहर लक्षणा अजहर लक्षणा भागत्याग लक्षणा का प्रयोग कर लो। जहां तुम भागत्याग लक्षणा का प्रयोग किया कि तुम और ईश्वर दोनों एक जैसे हो जाओगे, दोनों मिलकर जैसा होगा वैसा तुमको अनुभव हो जाएगा। जब तक भागत्याग लक्षणा का प्रयोग नहीं करोगे तब तक दोनों की एकता संभव नहीं होगी। दोनों की एकता संभव नहीं होगी तो एक होने पर कैसा होता है ये क्या अनुभव में आएगा, क्योंकि एकता ही नहीं हो पाएगा। भागत्याग लक्षणा का प्रयोग नहीं करोगे तो एकता ही नहीं हो पाएगी। उपाधियों के सहित एकता तो हो ही नहीं सकता है, उपाधि को फेंकने पर ही एकता होगी, उपाधियों को हटाए बिना एकता संभव नहीं है। एकता बुद्धि से यानी निश्चय से एकता हो सकता है, पदार्थ से एकता करने लग जाओगे तो संभव नहीं, फिर उसको एकता करने के लिए उपाधि नाश नाम रूप का बात करना पड़ेगा। अब किसी को कह दो साड़ी और ब्लाउज दोनों एक हैं, वह सामान्य व्यक्ति तो समझेगा ही नहीं साड़ी और ब्लाउज एक है, तो फिर ब्लाउज को नीचे पहना जाए संभव है, साड़ी को ऊपर पहना जाए संभव है, ये कैसे है, हर व्यक्ति यही कहेगा। अरे भाई एक होने के लिए दो प्रक्रियाएं, दोनों को एक सिद्ध करना होगा तो दोनों को मशीन में डालकर उसको उसके सारे अवयवों का शिथिल कर दो, तो उधर जब मशीन के पीछे के साइड में ले जाकर देखा तो देखो रूई एक ही है। एक तो ये हो सकता है प्रैक्टिकल दिखाना हो तो, तू यहां अलग अलग बता कि कौन सा ब्लाउज है कौन सा साड़ी है ना। साड़ी और ब्लाउज को दोनों में मशीन में डाल दी और पीछे जो रुई इकट्ठा होगा उसको ले जाकर खड़ा करके बोलो कि अच्छा तू इस रुई में से बता साड़ी कौन सी है और ब्लाउज कौन सी है, तो बता पाएगा वो दोनों एक हो गए कि नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल तो ये करना पड़ेगा, लेकिन ये करने के लिए मशीन में डालने से पहले जो साड़ी आकार में दिख रही थी और नाम साड़ी था, जो ब्लाउज आकार में दिख रही थी और नाम ब्लाउज था, ये दोनों अलग अलग ही हैं कि नहीं, नाम और रूप दोनों अलग अलग हैं कि नहीं। लेकिन अब ये नाम रूप बात किए बिना दोनों का एकता किया जा सकता है कि नहीं, तो वस्तुगत एकता नहीं की जा सकती, स्वरूपगत एकता की जा सकती है। वह इस दृष्टि में नाम और रूप को छोड़कर दोनों कपास उपादान कारण से बने हुए हैं, तो दोनों का उपादान कारण कपास होने के कारण वो दोनों एक हैं। ये दिमाग से निश्चय तो कर सकते हैं, बाकी आंख से दोनों अलग अलग दिखेंगे फिर भी दिमाग से निश्चय कर सकते हैं कि नहीं, दिमाग से तो निश्चय कर ही सकते हैं ना। दोनों के उपादान कारण कपास है तो कपास के लेवल पर बुद्धि से निश्चय कर सकते हैं दोनों कपास के हैं, कपास रूप है। अब यदि दोनों को तुम नाम रूप के रहते ही दोनों को एकता करके निश्चय कर नहीं सकते हो तो फिर मशीन में डाल दो तब तो तुमको निश्चय करना ही पड़ेगा ना, आंख से देखकर भी निश्चय करना पड़ेगा कि नहीं है? मशीन में डालने से पहले आंख से देखकर निश्चय नहीं होगा, बुद्धि से देखकर विचार से देखकर निश्चय करना पड़ेगा। और मशीन में डाल देने के बाद तो आंख से ही दोनों की एकता सिद्ध हो गई कि नहीं बोलो? हाँ, अभी वो पूछ रहे थे ना, स्त्री और पुरुष दोनों ही एक हैं भाई, तो कहते समय उनको ही लगा कि स्त्री अलग है पुरुष अलग है, कैसे एक है महाराज? तो बुद्धि से तो एक होगा, निश्चय से तो एक होगा, आंख से एक नहीं होगा। आंख से एक करना बहुत कठिनाई आ जाएगी, समझ गए कि नहीं? लेकिन बुद्धि से एक निश्चय करने में क्या कठिनाई है बोलो? स्त्री का शरीर का चाहे कोई भी अंग हो, आंख से देखते समय तो तुम्हें यही ना इसीलिए कठिनाई आ रही है, स्त्री के उभार हैं पुरुष के उभार नहीं है, इसलिए तुमको और कठिनाई पड़ रही है। स्त्री की उपस्थिति दूसरे उपस्थ इंद्रिय दूसरे ढंग का है, इंद्रिय गोलक है, इंद्रिय की बात नहीं कर रहा हूं, इंद्रिय तो एक ही प्रकार का है, इंद्रिय गोलक स्त्री का अलग ढंग का है पुरुष का अलग ढंग का है, इसलिए आंख के देखने पर तुमको दोनों को एक करना मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन बुद्धि से निश्चय करो कि दोनों शरीरों का उपादान कारण तो प्रकृति है कि नहीं? हा? दोनों शरीरों का पंचभूतात्मक है कि नहीं बोलो? स्त्री का शरीर भी पंचभूतात्मक है, पंचीकृत पंचभूतात्मक है, पुरुष का शरीर भी पंचीकृत पंचभूतात्मक है, तो पंचीकृत पंचभूतात्मक में दोनों में कोई अंतर नहीं है। बोलो, स्त्री के जो स्थूल शरीर है जिसको तुम स्त्री शरीर कह रहे हो, उस शरीर में यदि पृथ्वी तत्व 25% और जल तत्व 50% होता तो महाराज देखो, स्त्री के शरीर में जल तत्व ज्यादा है और पृथ्वी तत्व कम है, इसीलिए ये भेद है। पुरुष के शरीर में पृथ्वी तत्व ज्यादा है, जल तत्व कम है, ये भेद है, तुम कह सकते। लेकिन पंचीकरण के प्रक्रिया से तुम दोनों शरीरों को देखोगे हैं, तो दोनों शरीर को देखोगे तो कोई भेद होगा? उपादान कारण तो एक ही है, तो क्या भेद है? तो ये दोनों शरीर के आंख से अलग अलग देखने पर भी बुद्धि से एक ही है, निश्चय करने में आपत्ति क्या? और तुम्हें वो कठिनाई पड़े तो दोनों स्त्री शरीर और पुरुष शरीर किसी के मरे हुए दो शरीर को एक ही चिता में डाल दो और बचे हुए राख में कहो कि कौन सी स्त्री है और कौन सा पुरुष है, बोलो हैं? राख में अलग अलग कर लो, कर पाएगा? ये स्त्री का राख है, ये पुरुष का राख है, कर पाएगा? तो वहां फिर एकता जैसे कपड़े की, तो कैसे देखना है? यहां ये बताया जा रहा है, तिल में तेल है लेकिन उसको देखने के लिए तिल को पीड़ित करना पड़ेगा। पीड़ित करना पड़ेगा माने पेरना पड़ेगा ना? इसी तरह दही में घी है, उसको घी को देखने के लिए मथना पड़ेगा। नहीं मथोगे तो घी दिखेगा नहीं, दही दिखेगी घी नहीं दिखेगा। एक बात और याद आ गई हमको, एक घटना। एक बड़े भारी वेदांती थे, पंडित जी थे, काठमांडू की बात है, बड़े भारी वेदांती थे। तो तिलेषु तैलम दधिनिव सर्पी, वो तो इसी बात को बोलते थे। तो एक बार की बात है, वो फिर खाने के समय में घी के बिना भात ना खावे। नेपाली भात ज्यादा खाते हैं, बिहारी नेपाली बंगाली भात ज्यादा खाते हैं, तो भात खाते समय घी चाहिए। तो पूछा किसी के घर में गए, इसमें घी डाला कि नहीं? नहीं महाराज, घी तो नहीं डाला। बोले घी बिना तो हम खाएंगे नहीं महाराज, घी लाओ। घी था नहीं उस घर में। उसने, वो भी वेदांती थी, वो लाके उस भात में दही डाल दिया। वो तो बिगड़ पड़े, ये क्या करती है? हमने तेरे से घी मांगा था, तू लाके दही डालती है? उसने कहा कि ददनी वो सर्पी, महाराज दही में तो घी है ही है। अरे मूर्ख, दही में घी है लेकिन अप्रकट घी है, उससे काम नहीं चलने वाला है। दही में घी तो है, अप्रकट है, इसलिए उसमें काम नहीं चलने वाला है। मथकर निकाला हुआ घी चाहिए, दही में विद्यमान घी से काम नहीं चलेगा। तो फिर शाम को जब संयोग से, गांव की बात है ना, तो गांव में तो लकड़ी से भोजन पकाते हैं, तो शाम का जब भोजन पकाने का समय हुआ तो संयोग से जो अग्नि चूल्हे में, जो अग्नि राख में दबा के रखते हैं, फिर उसी को शाम को जगाते हैं, फिर पकाते हैं। तो शाम तक तो उसमें दबा के रखा हुआ लकड़ी का अग्नि बुझ गया, ठंडा हो गया, अब अग्नि नहीं है। पंडित जी ने कहा पत्नी को, अरे चाय बना के ला। तो पंडिताइन ने कहा अग्नि बुझ गई है, और अग्नि है ही नहीं, अग्नि बुझ गई है, आग ले आओ, तो आग हो तो फिर चाय पका दूं। पंडित कुर्सी उठा के लगे, ले अग्नि। बोले कुर्सी से कैसे चाय पकेगा? बोले इसमें अग्नि है तो है, तो क्या करे, उससे कहीं चाय पकेगा? तू सुबह लाके दही डाला था ना, उसी तरह हमने ये लकड़ी दे दी, और क्या। अग्नि मांगा तो हमने, घी मांगा तो दही ला कर दिया, अब तू अग्नि मांगती तो हम लकड़ी ले जाके देंगे, और क्या। अब जब तुमको लकड़ी से चाय नहीं बन सकती है तो दही से कहीं घी की पूर्ति होगी? अभिप्राय यह है, मंथन से, अरणि मंथन से अग्नि का प्रयोजन पूरा दृश्य देखेगा, और दधि मंथन से घी दिखाई पड़ेगा। हाँ, इसी तरह कहीं भी जहां जिस कार्य से प्रयोजन पूरा होना है, उस कार्य के, उसके प्राकट्य से ही प्रयोजन पूरा होगा। क्यों? तो फिर आदमी मुक्त है ही है, हर व्यक्ति मुक्त है, क्योंकि शुद्ध बुद्ध असंगम आत्मा तो है ही है, नहीं यही है, हाँ? तो मुक्त ही है। लेकिन उस आत्मा के स्वरूप को जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। अप्रकट आत्मा यहां होने पर भी प्रकट जब तक नहीं होगा मुक्ति नहीं होगी। जैसे अग्नि लकड़ी में है, प्रकट नहीं होगी तो चाय नहीं बनेगी। घी दही में है, मंथन करके प्रकट नहीं करोगे तो घी का स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए ब्रह्म यही है, लेकिन अरणि मंथन के द्वारा प्रकट नहीं करोगे तो ब्रह्म का आनंद नहीं मिलेगा। घी खाने का आनंद दही खाकर होगा, मंथन के बाद घी प्रकट हो तभी घी खाने का आनंद है। इसी तरह ब्रह्मानंद की अनुभूति जीवन में ही ब्रह्म है। जीवन में ब्रह्म होने पर भी ब्रह्मानंद की अनुभूति तो मंथन के बाद ही होगा, ब्रह्म प्राकट्य के बाद ही होगा। उसको मंथन कैसे करना है, तो कथम ये तम अनुपस्थिति, उस आत्मा को अनुभव करने के लिए और युक्ति बताया जा रहा है। पहले तो युक्ति बताई दिया दृष्टांत, सर्वव्यापीनम् आत्मानम् क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् तद्ब्रह्मोपनिषदम्। ये द्विरावृत्ति तद ब्रह्म उपनिषदम, ये जो द्वि आवृत्ति है, इस आवृत्ति का एक ही प्रयोजन है। कोई विशेष अर्थ कहने के लिए यह आवृत्ति नहीं की गई है। अध्याय की परिसमाप्ति सूचक के लिए, प्रकरण की परिसमाप्ति सूचन के लिए द्वि आवृत्ति है। आत्मा